फैक्ट्री फ्लोर पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मशीनें बंद थीं, आवाजें बंद थीं, लेकिन फिर भी शोर था, गुस्से का, नाराजगी का और टकराव का। सैकड़ों वर्कर्स एक जगह खड़े थे, कोई हाथ बांधे, कोई आपस में बातें करते हुए, तो कोई बस इंतजार में। तभी गेट से शामली अंदर आई। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन ठहराव भरे थे। चेहरा शांत, आंखें सीधी। वो भीड़ के पास पहुंची और बिना किसी हिचक के बोली, मुझे यूनियन लीडर से बात करनी है। उसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी और सीधी। कुछ वर्कर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रास्ता थोड़ा सा खुला। वही आदमी आगे आया, चेहरे पर वही जिद, वही तंज। उसने शामली को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा हंसा। हम आपसे बात नहीं करेंगे, उसने सीधा कहा। भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। शामली ने बिना रिएक्ट किए पूछा, क्यों? आदमी ने कंधे उचकाए, क्योंकि आप अभी बच्ची हैं। उसकी आवाज में साफ अपमान था। हम सिर्फ विश्वनाथ सर से बात करेंगे, और अगर उन्हें काम चालू करवाना है तो अपने बेटे को कहें नाक रगड़कर माफी मांगे। बस ये शब्द जैसे हवा में चिंगारी बनकर फैल गए। भीड़ से कुछ आवाजें उठी, सही बात है, माफी मांगनी पड़ेगी, वरना काम नहीं होगा। शामली ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को शांत कर रही हो, फिर बोली, आप सब समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि काम रुकने से नुकसान किसका होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन और अदिति दोनों साथ में वहां पहुंचे। आर्यन की नजरें सीधी उस आदमी पर थीं, जबकि अदिति के चेहरे पर साफ गुस्सा था। उन्हें देखते ही यूनियन लीडर हंसा जोर से। लो भाइयों, उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, दो और बच्चे आ गए। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। विश्वनाथ सर ने तो पूरा बिजनेस बच्चों के हाथ में दे दिया है, उसने तंज कसा, और आजकल की भीड़ ही बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। बस अगले ही पल भीड़ में नारे गूंजने लगे, हाय हाय, हाय हाय। शोर बढ़ता गया और माहौल और गर्म हो गया। आर्यन की मुठ्ठियां कस गईं, उसकी नसें तक उभर आई थीं, लेकिन वो फिर भी चुप था। अदिति ने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया। शामली, उसने दांत भींचते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है, दिल तो कर रहा है, मैं भी इसे एक चांटा मार ही दूं, ये खुद को समझ क्या रहा है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन गुस्से से भरी। शामली ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, हल्के से दबाया। नहीं, उसने बहुत धीरे से कहा, लेकिन उसमें साफ चेतावनी थी। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी, सीधे भीड़ के सामने। बस उसकी आवाज इस बार तेज थी, और अचानक कुछ पल के लिए शोर धीमा पड़ा। आप लोग गुस्से में हैं, मैं समझ सकती हूं, लेकिन ये तरीका नहीं है, उसने एक एक शब्द ठहर कर कहा। आप काम बंद करेंगे तो नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं होगा, आपका भी होगा। लेकिन कोई सुनने के मूड में नहीं था। भीड़ से आवाज आई, हमें कुछ नहीं सुनना, पहले माफी, फिर काम। फिर से नारे शुरू, हाय हाय, हाय हाय। माहौल फिर भड़क उठा। शामली की आंखों में एक पल के लिए निराशा झलकी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। आर्यन अब खुद को रोकने में मुश्किल महसूस कर रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पूरा माहौल बदल गया। थप थप थप, भारी कदमों की आवाज। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी। नारे धीरे धीरे थमने लगे, और अगले ही पल वो सामने था, विश्वनाथ। सफेद शर्ट बिल्कुल सटीक, चेहरा सख्त, आंखें ठंडी, लेकिन अंदर छुपी आग साफ दिख रही थी। उसकी एंट्री में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम में ऐसा दबाव था कि हवा खुद रास्ता दे रही थी। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। जो लोग अभी चिल्ला रहे थे वो भी अब चुप थे। विश्वनाथ सीधा आगे बढ़ा, शामली, आर्यन और अदिति के पास आकर रुका। उसने एक नजर तीनों पर डाली, फिर सीधा यूनियन लीडर की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं, और उस एक पल में पूरा सीन जैसे जम गया। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, बहुत शोर हो गया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर कोने तक पहुंची। कोई जवाब नहीं आया। यूनियन लीडर भी पहली बार थोड़ा संभल कर खड़ा था। विश्वनाथ एक कदम और आगे बढ़ा, अब वो बिल्कुल उसके सामने था। तुम्हें माफी चाहिए, उसने सीधा पूछा। आदमी ने हल्का सा सिर उठाया, हाँ, आपके बेटे से, सबके सामने। एक पल की खामोशी, फिर विश्वनाथ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। माफी, उसने दोहराया। फिर उसने पीछे खड़े आर्यन की तरफ देखा, और बिना कुछ कहे फिर वापस उस आदमी की तरफ मुड़ा। मिलेगी, उसने धीरे से कहा। भीड़ में हलचल हुई, कुछ चेहरे चमक उठे, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आवाज और ठंडी हो गई। लेकिन जिसे गलती की समझ होगी वो मांगेगा, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर तुम्हें लगता है कि दबाव बनाकर तुम मुझसे फैसले करवाओगे। तो उसने हल्का सा सिर झुकाया और फिर सीधा किया। तुम गलत आदमी से भिड़ गए हो। हर शब्द धीमा लेकिन चीर देने वाला। भीड़ फिर से खामोश, कोई आवाज नहीं। यूनियन लीडर के चेहरे पर जिदब भी थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी आ चुकी थी। विश्वनाथ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर वर्कर की आंखों में देखा। काम, उसने साफ कहा, आज नहीं होगा। ठीक है, कल भी नहीं होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, लेकिन उसने हल्का सा रुक कर कहा, जब ये मशीनें फिर से चलेंगी तो यहां वही लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं, ना कि धमकी देना। एक भारी सन्नाटा। आर्यन ने हमेशा ही विश्वनाथ को ऐसे देखा, जहां गुस्सा भी था और कंट्रोल भी। श्यामली की आंखों में हल्की सी राहत आई, लेकिन टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। यूनियन लीडर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द अटक गए। यूनियन लीडर ने अपनी ठुड्डी ऊंची की, जिद फिर से चेहरे पर लौट आई। तो ठीक है, उसने आवाज उठाकर कहा, कोई काम नहीं करेगा। भीड़ में फिर से हलचल हुई, कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ ने हामी में सिर हिलाया। जब तक माफी नहीं, वो आगे बोला, तब तक एक भी मशीन नहीं चलेगी। इस बार नारे उतने तेज नहीं थे, लेकिन जिद हवा में घुल चुकी थी। विश्वनाथ वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल बिना हिले। उसने धीरे से घड़ी की तरफ देखा, फिर वापस उसकी आंखों में। सोच लो, उसने शांत स्वर में कहा, जिद जितनी लंबी चलेगी नुकसान उतना गहरा होगा। यूनियन लीडर हंसा, डराने की कोशिश मत कीजिए। विश्वनाथ ने हल्का सा सिर हिलाया, डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। फिर उसने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा, एक इशारा किया। आर्यन समझ गया, ये लड़ाई अब सिर्फ गुस्से से नहीं, दिमाग से जीती जाएगी।